आर्यांश के पास अब कुछ नहीं रहा था, न रहने के लिए घर और न ही करने के लिए कोई काम। लेकिन हाँ, एक काम क्या करना था वो अच्छे से जानता था। आर्यांश लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने थोड़ी दूर पर बने पार्क के अंदर था। वहां उसे एक औरत दिखाई दी जिसके साथ एक बच्चा था। आर्यांश को यही लगता था कि दीवा ने अपना बच्चा खोया है तो शायद वो किसी और के बच्चे के साथ कंफर्टेबल महसूस कर सके। बस यही सोचकर आर्यांश ने उस औरत को लाइफ केयर हॉस्पिटल में क्लीनिंग स्टाफ की जॉब लेने का तरीका बता दिया था और साथ ही उसे ये भी समझाया था कि किस तरह उसे दीवा को अपने बच्चे को देना है। आर्यांश ने दीवा के कमरे का नंबर उसे बता दिया था। उस औरत को पहले लगा कि आर्यांश किसी तरह का मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां काम मांगने के लिए गई। आर्यांश को वहां के बारे में काफी कुछ पता था और उस औरत को तुरंत ही नौकरी भी मिल गई थी। आर्यांश के कहे मुताबिक उसने जबरदस्ती दीवा के पास अपना बच्चा छोड़ा और फिर वहां से चली गई थी। उसके जाते ही दीवा ने उस बच्चे की तरफ देखा जो 2 साल के करीब था। वो दिखने में साफ सुथरा था लेकिन दुबला पतला था। पता नहीं उन्हें ये क्यों लगा कि मैं बच्चा संभाल सकती हूँ और इस तरह कौन अनजान इंसान के हाथों अपना बच्चा छोड़कर जाता है। दीवा ने गहरी सांस ली और फिर बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवा की तरफ गौर से देख रहा था। दीवा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे अपने सामने बिठा लिया था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीवा ने मुस्कुराकर पूछा। शिव, बच्चे ने अपनी तुतलाती आवाज में जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है, दीवा ने जवाब दिया और फिर प्यार से उसके गाल को हल्का सा सहलाया। दीवा उसे प्यार से खोई हुई निगाहों से देख रही थी, तभी उसने महसूस किया कि बच्चा दूसरी तरफ देख रहा है। दीवा ने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो वो वहां रखी फ्रूट बास्केट को देख रहा था। क्या आपको भूख लगी है? दीवा ने जल्दी से उसकी तरफ देखकर पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। दीवा ने तुरंत उसके लिए फ्रूट काटने शुरू कर दिए थे। वो उसे अपने हाथों से खिला रही थी। इस बीच नर्स उसका चेकअप करने के लिए आई। दीवा को एक बच्चे के साथ देखकर वो हल्का हैरान हुई। ये बच्चा किसका है और यहाँ क्या कर रहा है? नर्स ने बच्चे को देखते हुए कहा। तभी उसे कुछ याद आया तो वो झुंझलाकर बोली, ये बच्चा सुबह मैंने किसी के साथ देखा था। कहीं उस क्लीनिंग स्टाफ के साथ तो नहीं है जिसने आज ही ज्वाइन किया था? उसे साफ इंस्ट्रक्शन मिला था कि वो अपने बच्चे को घर छोड़कर आए और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेशेंट को दे दी। नर्स को उस औरत पर गुस्सा आ रहा था और वो आगे बढ़कर बच्चे को दीवा से लेने लगी। तभी दीवा ने सख्त निगाहों से उसे देखते हुए ना में सिर हिला दिया था। ये क्या कर रही हो तुम? बच्चे से इस तरह गुस्से में कौन बात करता है? और मेरे पास कोई बच्चे को नहीं छोड़कर गया है। वो इस कमरे में सफाई करने के लिए आई थी, तब मैंने इसे रखने की जिद की थी। अब जाओ यहाँ से, दीवा ने उसे सख्ती से जवाब दिया। लेकिन मैम, आपकी तबीयत सही नहीं है और वैसे भी ये एक क्लीनिंग स्टाफ का बच्चा है, नर्स ने उसे समझाते हुए कहा। क्या मतलब क्लीनिंग स्टाफ का बच्चा है? क्या तुम्हारे लिए स्टेटस मायने रखता है? ये सिर्फ एक बच्चा है जो इस वक्त भूखा है। देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है और ना ही तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए तुम्हारी कंप्लेंट करनी है। यहाँ से चली जाओ और प्लीज आगे से मेरे रूम में मत आना, दीवा ने उसे अच्छा खासा डांट दिया था। नर्स को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ पलटकर वो बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है ये पागल हो गई है। खुद का मिसकैरेज हो गया तो इसे अब हर किसी के बच्चे पर प्यार आ रहा है। दीवा के कानों में उसकी बातें पड़ गई थीं और उसके ये ताने सुनकर उसकी आंखें नम होने लगी थीं। दीवा ने तुरंत अपनी आंखों के कोने को साफ किया और बच्चे की तरफ देखा जो नर्स के डांटने पर डर गया था। दीवा ने उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए भर्राई आवाज में बोली, डरो मत बेटा, सब ठीक है और कोई आपको नहीं डांटने वाला। उस बच्चे को गले लगाते ही दीवा को अपने अंदर एक अलग ही ममता का एहसास हुआ। अब तक वो अपने आंसुओं और दुख को खुद के अंदर समेटे हुई थी, लेकिन जैसे ही दीवा ने उसे गले लगाया उसके आंसू बहने लगे। दीवा ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया था। उसने मन ही मन कहा, इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मुझे तो पता तक नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मेरा उस बच्चे के साथ किसी तरह का अटैचमेंट हुआ था। अगर वो मेरे साथ होता तो आर्यांश मेरे करीब आने की जिद करता और क्या पता बच्चे के चलते मैं उसे माफ़ भी कर देती। न जाने क्यों आर्यांश में जुड़ी हर चीज़ मुझे तकलीफ ही देती है, दीवा रोते हुए मन ही मन खुद से शिकायतें करने लगी थी। तभी बच्चा उससे अलग हुआ और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा। रो नहीं, शिव ने कहा। दीवा ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। उसके पास होने से उसका दिल जल्द ही हल्का हो गया था और वो उसके साथ खेलने लगी थी। दीवा ने स्टाफ से कहकर उसके लिए कुछ खिलौने भी मंगा लिए थे और इस बीच उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आई थी। सुबह जब वो दीवा से मिली थी तब वो बेजान सोई हुई थी, जबकि अब वो बच्चे के साथ हंस रही थी। काम पूरा होने के बाद शाम को जब वो बच्चे को लेने के लिए आई तब दीवा ने उससे कहा, मुझे डॉक्टर 3-4 दिन बाद डिस्चार्ज देने वाले हैं, तब तक तुम यहाँ काम करो, तब इसे मुझे दे देना, मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैडम जी, शिव भी आपके साथ खेलकर बहुत खुश हुआ, उस औरत ने मुस्कुराकर कहा और वहां से जाने लगी। वो जाते हुए मन ही मन बोली, वो आदमी कौन था जो कल रात मिला था? उसे इस हॉस्पिटल के बारे में भी काफी सारी चीजों के बारे में पता है। ऊपर से वो इस लड़की को भी जानता है। अगर वो अमीर आदमी है तो उस पार्क में क्या कर रहा था? उस औरत के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आर्यांश अभी भी पार्क में उसका इंतजार कर रहा था। जब ड्यूटी खत्म होने के बाद वो हॉस्पिटल के कैंटीन से बचा हुआ खाना लेकर वापस पार्क में पहुंची तो आर्यांश उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? उस औरत ने आर्यांश की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्योंकि उसके कपड़े और चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वो पूरे दिन वहीं पर था। इसे छोड़ो, क्या तुमने मेरा काम किया? क्या वो बच्चे को देखकर खुश हुई थी या रो रही थी? आर्यांश ने बातचीत का विषय बदलते हुए तुरंत पूछा। उस औरत ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ आपका प्लान काम कर गया। शुरू में उन्हें अजीब जरूर लगा था जब मैं बच्चे को उनके पास जबरदस्ती छोड़कर गई, और मुझे पता भी चला कि एक नर्स के साथ उनकी बहस हो गई क्योंकि वो बच्चे को उनके पास से ले जाना चाहती थी। वो सच में मेरे शिव के साथ खेलकर बहुत खुश थी, और शाम को जब मैं उनसे मिलने गई तब उनका चेहरा भी खिला हुआ था। सच में वो मैडम जी बहुत अच्छी हैं, पर आप उन्हें कैसे जानते हैं? बोलते हुए उसने आर्यांश की तरफ आंखें छोटी करके देखा। क्योंकि हम दोनों, आर्यांश बोलते हुए रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। वो जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, वो मेरी फ्रेंड है। अगर आपकी फ्रेंड है तो आप खुद मिलने क्यों नहीं गए? उस औरत ने पूछा। मैं नहीं जा सकता। अब ज्यादा सवाल मत करो, पूरा दिन काम करके तुम थक गई होगी। लो बच्चे को थोड़ी देर मुझे दे दो और तुम आराम करो, आर्यांश बोला और जबरदस्ती शिव को अपने हाथ में ले लिया था। वो औरत वहीं बेंच पर बैठ गई थी और खाना निकालने लगी। उसने देखा आर्यांश भी बच्चे के साथ खेल रहा था और वो भी खुश नजर आ रहा था।
अरे रुको, तुम इतना तेज कैसे दौड़ लेते हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग पाऊंगा, आर्यांश ने बच्चों जैसी आवाज निकालकर बोला और शिव के पीछे धीरे धीरे चलते हुए दौड़ रहा था। शिव उसके आगे आगे हंसते हुए भाग रहा था। वो औरत मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने कहा, उन मैडम जी का तो समझ आता है कि उन्होंने अपना बच्चा खोया है, लेकिन इनका क्या? ये क्यों मेरे शिव के साथ इतना खेल रहे हैं? क्या इन्हें बच्चे इतने पसंद है? थोड़ी देर दौड़ने के बाद शिव थक गया तो वो औरत उसे खाना खिलाने लगी। उसने आर्यांश की तरफ देखा जो उनके पास वाली बेंच पर बैठा मुस्कुराते हुए शिव को खाते हुए देख रहा था। आप भी लीजिए, उस औरत ने आर्यांश की तरफ खाना बढ़ाते हुए कहा, जिस पर आर्यांश ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, आर्यांश ने जवाब दिया। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है, कोई भी कह सकता है कि आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होगा। आपका चेहरा पीला पड़ गया है और आवाज़ भी काफ़ी धीमी हो गई है, थोड़ा सा ले लीजिए, उस औरत ने कहा और ज़बरदस्ती आर्यांश के हाथ में एक सैंडविच पकड़ा दिया था। थैंक्स, आर्यांश ने धीमी आवाज़ में कहा और दूसरी तरफ फेस करके उसे धीरे धीरे खाने लगा था। आर्यांश की आंखें नम होने लगी थीं और इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि दीवाने खाना खाया होगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठ और वर्तिका समीक्षा के कहने पर आर्यांश को ढूंढ रहे थे। पृथ्वी ने मनीष और समीक्षा से साफ कहा था कि अगर उन्होंने आर्यांश की मदद की तो वो उनके साथ भी कोई नरमी नहीं बरतने वाले हैं। मनीष को पृथ्वी के फैसले से कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि समीक्षा का दिल उसके लिए तड़प रहा था। उसे बार बार यही फिक्र हो रही थी कि आर्यांश कहाँ होगा, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ और वर्तिका को उसे ढूंढने का काम लगा दिया था। पूरे दिन से वे दोनों आर्यांश को ढूंढ रहे थे, उसे कॉल कर रहे थे, पर ना तो आर्यांश का कॉल लग रहा था और ना ही वो उन्हें मिल रहा था। रात के 11 बजे के करीब वर्तिका के पास समीक्षा का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और मायूस स्वर में कहा, मॉम आप हर आधे घंटे में कॉल कर रही हैं और मुझे बार बार वही जवाब देते हुए बहुत बुरा लग रहा है, भाई नहीं मिले हैं। लेकिन वो कहाँ जा सकता है, श्रेष्ठ उसका बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उसने उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया। क्या श्रेष्ठ को नहीं पता कि वो कहाँ हो सकता है, समीक्षा ने बेचैन स्वर में कहा। कॉल स्पीकर पर था। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, हम दोनों के बीच में इन दिनों ठीक से बात नहीं हो रही, पर आर्यांश किसी भी मुसीबत में होता है तो वो पहले मुझे कॉल करता है। उसके चक्कर में हम कियाना तक के पास आए, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था, और अफसोस वो लाइफ केयर हॉस्पिटल भी नहीं आया। एक पल के लिए लगा था कि वो दीवा से मिलने के लिए गया होगा। वो दीवा से मिलने नहीं जा सकता है श्रेष्ठ, क्योंकि पापा जी ने उसके खिलाफ पहले ही लीगल एक्शन ले रखा है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, समीक्षा ने सिर पकड़ कर कहा। डोंट वरी मॉम, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वर्तिका ने समीक्षा को आश्वासन दिया और फिर कॉल कट कर दिया था। उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा। उसके पास पैसे भी नहीं हैं जो वो कहीं और जा सके, फिर कहाँ हो सकता है, श्रेष्ठ ने परेशान स्वर में कहा। कहीं भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि भाई भले ही दीवा से ना मिल सके, लेकिन उसके आसपास जरूर होंगे। क्यों ना हम हॉस्पिटल के आसपास की जगह में देखकर ट्राई करें, वर्तिका ने सुझाव दिया। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, एक आखिरी उम्मीद के तौर पर, आई होप कि आर्यांश मिल जाए, श्रेष्ठ ने गहरी सांस लेकर कहा। वर्तिका के कहने पर वे लोग अपनी गाड़ी में लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे और आसपास की जगह को देखने लगे। रात के 12 बजे के करीब उनकी नज़र पार्क की तरफ गई, वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यांश एक बेंच पर सोया हुआ था। उसे देखकर उनके चेहरे पर राहत के भी भाव थे और साथ ही उसकी हालत देखकर उन्हें बुरा भी लग रहा था। श्रेष्ठ तुरंत आर्यांश के पास गया और उसे उठाने के लिए जब उसने आर्यांश के हाथ को छुआ तो उसने तुरंत अपना हाथ आर्यांश से दूर कर दिया था। क्या हुआ? वर्तिका ने श्रेष्ठ के रिएक्शन को देखकर हैरानी से पूछा। मुझे लगता है हमें पहले डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, इसे फीवर है, श्रेष्ठ ने धीमी आवाज में कहा। वर्तिका की आंखें नम होने लगी थीं। उसने आर्यांश की तरफ देखा जो ठंड की वजह से हल्का कांप रहा था। श्रेष्ठ के कहने पर वर्तिका ने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल किया और लाइफ केयर हॉस्पिटल पास होने की वजह से आर्यांश को वहीं ले जाया जा रहा था। जैसे ही आर्यांश को लाइफ केयर हॉस्पिटल में लाया गया, उसी के साथ पृथ्वी कपूर को कॉल पहुंच गया था। मैंने उस लड़के को साफ मना किया था कि वो उस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं जा सकता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद वो वहीं पर गया है, पृथ्वी गुस्से में दांत पीसते हुए बोले और बिना समय की परवाह किए वो सीधा पुलिस लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने लगे।